रिकॉर्डिंग शुरू कर सकती हैं। तो ठीक है, जज़ाकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अन्नै युबअसू, कुल बला वरब्बी लतुबअसुन्ना यौमा लतुनब्बअुन्ना बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर इलल आखिर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, والحمد لله رب العالمين। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما। तो आपकी फ़िक़्हा की क्लास के बाद अब हम तफसीर की क्लास शुरू करते हैं। फ़िक़्हा की क्लास के अंदर असल में हमारी दो क्लासेस कंबाइन होती हैं, दोनों क्लासेस को एक ही साथ फ़िक़्हा पढ़ाई जाती है। तो वो फिर एक आलिमा क्लास है जो कि फिर उनकी दूसरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ दीन एसेंशियल्स के अंदर पर तफसीर की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे घंटे में। तो इसमें हम सूरह तगाबुन की तफसीर पढ़ रहे हैं, 28वें पारे के तकरीबन निसफ के बाद ये सूरत शुरू होती है। इसमें हमने आयत नंबर 6 तक की का तर्जुमा, खुलासा तफसीर और मआरिफ व मसाइल पढ़ लिए थे। सही, आखिरी आयत जो पढ़ी थी ज़ालिका, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इसलिए है कि बेअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति, के लाते थे उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियाँ। फ़क़ालू, तो ये लोग क्या कहते थे, अबशरू यहदूनना, क्या ये आदमी हमें हिदायत देंगे। फ़क़फ़रू, बस उन्होंने कुफ़र किया, उन्होंने इन आदमियों को, यानी जो बशर रसूल की का काम करते थे, तो उनका इन्होंने इनकार कर दिया। वह तवल्लव, और उन्होंने पीठ फेर दी। वस्तग़नल्लाह, तो अल्लाह ताला ने भी इनसे पीठ फेर ली। पीठ फेर ली का मतलब क्या बामुहावरा, कि अल्लाह ताला ने भी इनसे इस्तग़ना कर लिया, बेपरवाही करी कि भाई तुम मेरे रसूल को लिफ्ट नहीं कराते ना, तो मैं भी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराऊंगा। ठीक है, वल्लाहु गनीयुन हमीद, और अल्लाह ताला गनी भी है और हमीद भी है। अल्लाह ताला को किसी की परवाह नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की हमद करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। इंसानों में भी अल्लाह की हमद करने वाले बहुत हैं, और फरिश्ते तो हैं ही अल्लाह की हमद के लिए, उनका तो और कोई काम ही नहीं है। सही है, तो हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अच्छा, आपने क्या लिखा है, फितने के बारे में याद कराऊं बोले थे। जी, आपको मैंने जवाब दिया था आपके सवाल का, लेकिन फितने का जो लफ्ज़ है ना, ये आगे आयात में आएगा। ये है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आयात जो शुरू होती है ना, तो उनमें है ये ना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तो जब वो आयत आएगी इंशाल्लाह, तो उसके तहत फिर इस लफ्ज़ की तहकीक में हम पढ़ेंगे। अभी तो यही 10 आयात तक पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद तो उस वक्त इंशाल्लाह अगर याद करा दें। तो फरमाया कि ज़अमल लदीना, के दावा करते हैं वो लोग। ज़अम का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ज़ोम है, इसको बड़ा ज़ोम है, बड़ा दावा है इसको अपने बारे में। ठीक है, तो दावे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और ज़ोम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो फ़ेल बनता है अरबी में, वो ज़ामा बनता है। तो ज़अमल लदीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ़्र किया, उन लोगों ने दावा किया, अल्लन युबअसू, के हम कभी भी नहीं उठाए जाएंगे। बास कहते हैं उठाए जाने को, बासा युबअसू। ठीक है, तो इसके पैसिव फॉर्म है युबअसू, कि हम यानी युबअसू का होता है हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे, हरगिज़ नहीं हम उठाए जाएंगे, यानी मर जाएंगे ना, तो उसके बाद कोई हमें दोबारा ज़िंदा करके हमारे हिसाब किताब नहीं लेगा। कुल, कह दीजिए आप, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, बला व रब्बी, बल्कि कसम है मेरे रब की, ये अरबी जुबान का एक स्टाइल है कसम खाने का, बला व रब्बी, ठीक है, कि मेरे रब की कसम है। वाओ कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक तो एंड के लिए इस्तेमाल होता है ना, और एक कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है, वल्लाही अल्लाह की कसम, तो उसी तरीके से व रब्बी मेरे रब की कसम। और बला का लफ्ज जो है ये यानी मतलब तो इसका बल्कि ही होता है, लेकिन इस तरह से भी अरबी जुबान में कसम खाई जाती है, बला व रब्बी। लतुबअसुन्ना यानी लाम का मतलब होता है तहकीक, जरूर बिल जरूर, ठीक है, यानी अलबत्ता से भी ट्रांसलेट करते हैं, तहकीक से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये लामे ताकीद होता है, ताकीद के लिए जो लाम इस्तेमाल होता है। तुब आसुन्ना, तुम जरूर बिल जरूर उठाए जाओगे, ठीक है, तुब आसुन्ना, इनको कह दीजिए आप कि अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, तुम जरूर उठाए जाओगे। थुम्मा लतुनब्बउन्ना बेमा अमिल तुम, फिर उसके बाद जरूर बिल जरूर तुम जरूर जतलाए जाओगे। क्या मतलब कि तुम्हें दिखाया जाएगा। नब्बा युनब्बाउ का मतलब होता है, नब्बा युनब्बाउ का मतलब होता है कि खबर देना, खोल करके किसी को बयान करना। तो तुनब्बउन्ना, तुम जरूर दिखलाए जाओगे, जतलाए जाओगे, होता है ना, आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं फिर उसके बाद उस एहसान को बयान करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी एहसान जतलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने तुम पर ये एहसान किया और ये एहसान किया और ये एहसान किया, उसको कहते हैं एहसान जतलाना, ठीक है। तो जब कोई चीज खोल करके दिखाई जा रही होती है ना, तो उसको भी कहते हैं जतला देना, जतलाना। तो तुम जरूर दिखलाए जाओगे। बेमा अमिल तुम, जो तुमने अमल किए हैं उन वो चीजें तुम दिखलाए जाओगे, तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने आएंगे, जो तुमने मेरे रसूलों के साथ किया है ना, ठीक है, ये भुलाया नहीं जाएगा, है ना। पहले एक बयान में भी आपके सामने यह हदीस सुनाई थी कि गुनाह भुलाया नहीं जाएगा, ये सब सेव हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और ये तुम्हारे सामने खोल खोल करके तुम्हारे सामने दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब क्या कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करने को कह रहे हैं, कहने को कह रहे हैं, ये नहीं कि आप इनको दिखला दीजिए, आप जो है वो कयामत की तस्वीरें दिखला दीजिए इनको, कयामत की जो है ना वो आवाजें सुनवा दीजिए उनको, या इनको कयामत की सैर करवा के ले आइए, है ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, आप इनके सामने कह दीजिए यकीन के साथ, एतमाद के साथ, तुम जरूर बिल जरूर उठाए जाओगे, ठीक है। अब जो मानने वाला होता है उसके ऊपर इन बातों का असर होता है, उसके सामने जब यकीन के साथ एतमाद के साथ गैब की बातें बताई जाती है ना, तो उसके सामने उसको असर होता है, और वो इससे ना यानी वो लरस जाता है, वो दहल जाता है। और जो नहीं मानने वाला होता वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि क्या ये कौन सी बातें कर रहे हो तुम, ये तुम्हारी बातों की बुनियाद पर हम जो है वो यकीन कर लें कि हम मरने के बाद उठाए जाएंगे, हमारी हड्डियां वो सीधा हो जाएंगी, उसके बाद इन हड्डियों के अंदर दोबारा जान डाल दी जाएगी, और हम जो कर रहे हैं वो सब का सब सेव हो रहा है यहाँ पर, है ये तुम्हारे कहने के ऊपर हम यकीन कर लें। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि चलो ये तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहे ना, तो तुम इनको तस्वीरें दिखला दो। क्या अल्लाह ताला के लिए तस्वीरें दिखलाना कोई मुश्किल काम था? हाँ, आज के दौर में तस्वीरें दिखलाते हैं फिर भी बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला तो उस जमाने में भी तस्वीरें दिखला सकते थे, उस जमाने में भी यानी जो टेक्नोलॉजी जो आज इंसानों ने बनाई है तो अल्लाह ताला की इजाजत से ही बनाई है ना, तो उस जमाने में भी तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी ना अल्लाह ताला के पास, तो अपने रसूल के जरिए से ये चीजें करवा सकते थे, लेकिन इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करी। बस जुबानी बात का एतबार करो तो बच जाओगे, अगर जुबानी बातों का एतबार नहीं करोगे मेरे रसूल की तो नहीं बचोगे, ठीक है। तो इसी यही यही तरीका होता है ईमान वालों का, यही रसूल का तरीका है, यही ईमान वालों का तरीका है कि वो यकीन के साथ एतमाद के साथ कयामत के बारे में लोगों को बतलाते हैं। अब मानना या ना मानना उनकी मर्जी, ठीक है, वो माने उनका उनका फायदा होगा, नहीं माने उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसके अंदर ना वो यानी अजीब अजीब बातें करके लोगों को समझाने की या लोगों को जो है वो यकीन दिलवाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा अपना यकीन होना चाहिए इस बात के ऊपर, ठीक है, आखिरत के ऊपर हमारा अपना यकीन होना चाहिए, अपना एतमाद गैर मुतजलजल होना चाहिए, और फिर अब आप उसको लोगों को बता दें, ठीक है। बाकी हिदायत और तौफीक तो वैसे भी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है तो बंदा फिर जो चाहे करे। तो नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमा रहे हैं कि इनको कह दीजिए, मेरे रब की कसम, अल्लाह की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। वज़ालिक अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह के ऊपर आसान है, यसीर आसान, ठीक है। अच्छा, इसके खुलासे तफसीर में क्या कहते हैं, अगले पेज के ऊपर खुलासे तफसीर है कि ये काफिर मज़मून अजाब आखिरत का सुनकर, जैसा कि लहुम अजाब अलीम में मस्कूर है, पिछली सूरत पिछली आयत में था ना, आयत नंबर 5 में, कि दर्दनाक अजाब तुम्हें होगा, तो ये दावा करते हैं कि वो हरगिज दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद अजाब अलीम का वकूअ बतलाया जा रहा है, यानी जिंदा ही नहीं किए जाएंगे तो अजाब अलीम कहाँ से आएगा हमारे ऊपर, ये काफिर कहते हैं। तो आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, यानी बला क्यों नहीं, वल्लाही ज़रूर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, फिर जो जो कुछ तुमने किया है तुमको सब, तुम सबको जतला दिया जाएगा और उस पर सजा दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये बास व जजा, यानी ये उठाए जाना जिसको बास कहते हैं, और जजा यानी जो बदला दिया जाएगा तुम्हें, अल्लाह को बवजह कमाल कुदरत बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला के पास कुदरत भी है और कामिल कुदरत है, नाकिस कुदरत नहीं है। हमारे पास जो कुदरत है ना, नाकिस है, बहुत ही फॉल्टी है, हमारी कुदरत कंप्लीट नहीं है, छोटी छोटी सी कुदरतें हैं हमारे पास, ठीक है। अल्लाह ताला की कुदरत कामिल है, उठाए जाने के ऊपर कोई यानी कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला के लिए उठाया जाना हमें और जजा दिया जाना। फिर फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अन्ज़लना, बस ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और नूर पर, अल्लज़ी अन्ज़लना, जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। नूर पर ईमान ले आओ जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है, तो इसका आसान मफहूम जो है वो कुरान है, और आगे हम मारफ मसाइल में इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इन सब बातों के ऊपर तुम ईमान लेकर के आ जाओ, यानी ईमान का मतलब क्या होता है, चले आपसे पूछ लेते हैं कि ईमान किस चीज को कहते हैं। बुनियादी डेफिनेशन ईमान की तो हर ईमान वाले को मालूम होनी चाहिए, तो एक दफा उसकी तकरार कर लेते हैं कि ईमान का क्या मतलब होता है। जी, एक लफ्ज, दो लफ्ज, या जुमले की शक्ल में इसका जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, ईमान क्या चीज होती है भाई। फेथ, फेथ क्या चीज होती है, मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती है। माशाल्लाह, ईमान का मतलब ही नहीं पता ईमान वालों को। अल्लाह पर यकीन, और बताएं, अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन, और बताएं, अमन में आना, नहीं जी, ये सब तो ईमान का मतलब नहीं होता। ईमान मुफस्सल, हम किसी को कहते हैं कि आप दीन की बुनियादी उलूम हासिल करें तो वो नाराज हो जाते हैं, सही है, लेकिन मसला ये कि हमारी बुनियादें ही नहीं बनी हुई होती हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि जी नमाज कैसे पढ़ना है, तहारत कैसे हासिल करनी है, और रोज़ा कैसे रखना है, और ज़कात कैसे देनी है, ये दीन की बुनियादें हैं, ठीक है। ये दीन की बुनियादें तो नहीं है ना, ये तो दीन के रुकन है, बुनियाद तो कोई और चीज़ होती है, नहीं है। तो बुनियाद को तो हमें पता नहीं होता, हम इमारत खड़ी करने के ऊपर बड़े फिक्रमंद होते हैं। तो भी बुनियाद होगी, फाउंडेशन होगी, तो उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है ना। अगर बगैर बुनियाद के इमारत खड़ी करनी शुरू कर दें तो फिर ऐसे इमारत का क्या बनेगा? नहीं, सारे जवाब जो है ना गलत है। बंदे का यकीन अल्लाह पर, सारे जवाब गलत हैं। अल्लाह को मानकर अतात करना, ये भी गलत है। और बताएं जी। जी, अभी तो हमने इस क्लास का नाम रखा है दीन एसेंशियल्स। तफसीर की क्लास इसका नाम नहीं है, तफसीर तो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाते हैं। असल में तो दीन एसेंशियल्स है, और बुनियादों से ज़्यादा एसेंशियल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है, राइट? तो क्या है ईमान, क्या है? नहीं पता ना, मान लेना चाहिए कि हमें नहीं पता, ठीक है? अल्लाह की अताअत करना, माशाल्लाह। वैसे मजे की बात यह है कि पता होता भी अगर है ना, तो भी वो दिमाग में आता नहीं है, या इतनी अच्छी तरह से पता नहीं होता कि वो जवाब देने के भी काबिल बना सके इंसान को। तो ईमान का मतलब एक लफ्ज में जवाब दें, एक लफ्ज में। सारे जवाब गलत है। अच्छा जी, एक लफ्ज में ईमान का जवाब होता है एतमाद। एतमाद, और ये उस कंपनी एतमाद की बात नहीं हो रही जिसको वीजा लगाने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, एतमाद.com, ठीक है? ईमान का मतलब होता है एतमाद करना, ठीक है जी? एतमाद करना, ट्रस्ट करना, ठीक है? नहीं, आपको वैसे भी आप क्लास का हिस्सा नहीं है, लेकिन खैर, ईमान का मतलब है एतमाद करना, सही है? गैब की बातों को, जिनको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, फाइव सेंसेस, बल्कि अकल से भी आप नहीं पहुंच सकते, किसी के कहने पर एतमाद करके उन बातों को मान लेना, किसी के कहने पर एतमाद करके उन बातों को मान लेना, यह है ईमान, ठीक है? हमारे हजरत बहुत पहले एक दफा बयान किया था अमेरिका में, याद है मुझे, कैलिफोर्निया में, तो वहां पे पहली दफा इस तरह की बात करी थी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में माइक है, क्योंकि बयान कर रहे थे और हाथ में उनके माइक था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ईमान है कि मेरे हाथ में माइक है, तो आप जवाब दें जी हमें ईमान है कि आपके हाथ में माइक है, तो ये जवाब गलत है, क्योंकि आप तो मुशाहिदा कर रहे हैं कि मेरे हाथ में माइक है, तो मुशाहिदा तो ईमान नहीं होता। अलबत्ता अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको ईमान है कि मेरी जेब में फोन है, राइट, और आपने देखा नहीं है कि मेरी जेब में फोन है, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी जेब में फोन है, क्या आपको मेरी बात पर ईमान है, और आप कहें कि हाँ हमें आपकी बात पर ईमान है कि आपके जेब में फोन है, तो ये जुमला सही होगा, ये ईमान होता है, क्योंकि फोन को आपने देखा नहीं है, आप ट्रस्ट करके उन साहब की बात पर ट्रस्ट करके एतमाद कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी जेब में फोन है, सही है, इसको ईमान कहते हैं, ये है ईमान। बाकी जितना आपने लिखा है ना, ये ईमान की तारीफ नहीं है, ठीक है? तो ईमान की तारीफ पहले समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज हमें नहीं पता ना, तो फिर बाकी सब आपका क्या है, सब मुतजलजल है। मुतजलजल समझते हैं ना, शेकी शेकी एवरीथिंग, ये वो गाने वाला शेकी नहीं, बल्कि शेक करने वाला शेकी, सही है? जो कि शेकी होता है, बाकी सब कुछ आपका शेकी है। अगर आपको ईमान नहीं है, अगर आपको एतमाद नहीं है, आपको एतमाद अगर अपने नजरों पर है, अगर आपको एतमाद अपने टच करने के ऊपर है, कि मैं टच करूंगी तब मुझे यकीन आएगा, मैं देखूंगी तब मुझे यकीन आएगा, या आपको यकीन अपने अकल पर है कि मेरी अकल में बात आएगी तब मैं मानूंगी। इसका क्या मतलब हुआ? ईमान नहीं है, ठीक है, ईमान नहीं है। अकल पे भरोसा है, आंख पे भरोसा है, कान पे भरोसा है, नाक पे भरोसा है, हाथ पैर के टच पे भरोसा है, दिस इज नॉट ईमान। ईमान तो एतमाद को कहता है, सही है। तो ये बजाहिर आप समझ रहे होंगे कि बचपने की बातें कर रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो बात कह रहे हैं ना, किसी वजह से कह रहे हैं। अगर ये एतमाद है तो ईमान पक्का है, अगर एतमाद नहीं है तो फिर ईमान पक्का नहीं है। और जितने अमाल करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, और जितना इल्म हासिल करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, ये सब का सब शेकी है, सब का सब शेकी है, ठीक है। तो एतमाद के कॉन्सेप्ट को समझना ये एसेंशियल है, ठीक है। इसके ऊपर यानी ये बुनियाद है, इसके ऊपर बाकी चीजें बिल्ड होती हैं। इस एतमाद को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, तो ईमान लेकर के आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व नूर लज़ी अनज़लना, और जो नूर नाजिल किया उसके हमने, जो नूर नाजिल किया हमने, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह ताला हर चीज यानी जो तुम अमल करते हो उसकी खबर रखने वाला है, ठीक है। जरा होल्ड कीजिएगा, काम को देख के आते हैं। जी सॉरी, इधर एक काफी तकलीफ हो रही थी, उसको तो मुझे बुला लिया था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, रो रही थी बहुत, आप लोगों ने आवाज़ भी सुनी होगी। तो चले शुरू करते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि हाँ, ईमान के ऊपर बात हो रही थी कि ईमान जो है वो एतमाद का नाम है, और इस एतमाद की बुनियाद पर ही फिर सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। आमाल भी वही मजबूत होते हैं जो इस एतमाद के साथ खड़े हों, और अगर एतमाद नहीं है ना तो फिर हर चीज़ फिर शेकी हो जाती है। तो बात यही है कि ये एतमाद आप किसके ऊपर करते हैं ना। पिछली क्लासों में जैसे सूरह नूह की तफसीर के अंदर हमने तफसील से ये बात करी है कि दोनों पार्टीज़ होती हैं दुनिया के अंदर, हमेशा दुनिया में दोनों पार्टीज़ होती हैं, दोनों यानी हक और बातिल दोनों की तरफ, और दोनों गैब की बातों की तरफ ही बुला रहे होते हैं। दोनों जो है ना वादे कर रहे होते हैं कि हमारी बात मान लो, वो कह रहे होते हैं हमारी बात मान लो, ये कह रहे होते हैं हमारी बात मान लो, ठीक है। तो भाई एक ऑडियंस का बंदा वो किन की बात माने, उनकी माने कि इनकी माने, दोनों ही एक जैसी बातें कर रहे होते हैं, दोनों ही एक जैसे दावे कर रहे होते हैं कि हमारी मान लो तो कामयाब हो जाओगे, हमारी नहीं मानो तो कामयाब नहीं होगे, नाकाम हो जाओगे, ठीक है। तो किसकी बात माने उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि इनमें से कौन एक शराफत वाली जिंदगी गुजार रहा है, सच वाली जिंदगी गुजार रहा है, नेकी वाली जिंदगी गुजार रहा है, हया वाली जिंदगी गुजार रहा है, यही, और कौन इनमें से झूठ की जिंदगी गुजार रहा है, बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी गुजार रहा है, फिस्क फुजूर वाली जिंदगी गुजार रहा है, राइट। तो उसकी बात नहीं माननी है ना, जो फिस्क फुजूर की जिंदगी गुजार रहा है उसकी बात नहीं माननी है, और जो फिस्क फुजूर की जिंदगी नहीं गुजार रहा है, शराफत और हया की जिंदगी गुजार रहा है, उसकी बात माननी है, ठीक है ना। क्या मतलब? उस पर एतमाद करना है, दूसरे पर एतमाद नहीं करना है। चाहे उसकी बात हमें अच्छी लग रही हो और दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लग रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले की बात हमें समझ में आ रही हो, दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एतमाद करना पड़ता है, और एतमाद की कॉजेज जो हैं वो ये होते हैं कि उनकी ओवरऑल लाइफ कैसी है, ये होते हैं एतमाद के कॉजेज। ये नहीं होता कि इसकी बात मेरे समझ में आएगी तो मैं एतमाद करूंगा, और उसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं एतमाद नहीं करूंगा, बात समझ में आ रही है कुछ? ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये क्यों मैं आप लोगों को इस सारी बातें बता रहा हूँ, इसलिए कि हम ये बुनियादी गलती कर जाते हैं, हम अपने उलमा और मशायख पर एतमाद नहीं करते। हम किसी फासिक, फाजिर, काफिर, मुलहिद, राइट, काफिरों के साथ ही, मुलहिदों के साथ ही, ऐसे शख्स पर एतमाद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसकी बात मुझे समझ में आ रही है ना भाई, उसकी बात मुझे समझ में आ रही है, और जो मौलाना साहब हैं उनकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है ना जी। करते हैं कि नहीं करते हैं ये वाली हरकत? हम करते हैं कि नहीं करते हैं? माशाल्लाह जी। मुलहिद क्या है ना, ये अगर आप न्यू स्टूडेंट भी लग रही हैं, मुलहिद इल्हाद करने वाले को कहते हैं, और ये जो इल्हाद का टॉपिक है इसको लाजमन अपने ऊपर वाजिब कर लें कि आपने इल्हाद को समझना है कि इल्हाद क्या होता है, इल्हाद क्या होता है, ये आपने लाजमन समझना है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, क्लासेस मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर मुस्तकिल कम अज़ कम दो बयान मौजूद हैं, इल्हाद क्या होता है। तो इल्हाद को समझ लें, क्योंकि इस दौर के अंदर दीनदार मुसलमान इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, इस दौर में दीनदार मुसलमान इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, जो कि कुफर होता है। ये कुफर की एक किस्म है इल्हाद, और हमें पता ही नहीं है कि इल्हाद क्या चीज़ होती है, और हम उसका शिकार हो चले जा रहे हैं, राइट। ये बुनियादी बातें हैं दीन की, बुनियाद, एसेंशियल्स ऑफ द दीन, कि इल्हाद क्या होता है, ताकि अपने आप को, अपनी औलादों को इल्हाद से बचाने की कोशिश करें, राइट। पता ही नहीं होगा कि क्या गलती कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप को उससे बचाएंगे, ठीक है। तो एतमाद जो है ना, इसको इसको अपनी घुट्टी में बिठाने की जरूरत है कि ये क्या चीज होती है, किस पर एतमाद करना है, अपनी अकल पर एतमाद करना है, या हमने उन लोगों पर एतमाद करना है कि जिनकी जिंदगियों के अंदर ये शराफत है, जिनकी जिंदगियों के अंदर बेहयाई नहीं है, फिस्क व फुजूर नहीं है, राइट, कुफ्र और काफिरों का साथ नहीं है, बल्कि ईमान वालों का साथ है, हमें उन पर एतमाद करना है, सही है, अपनी अकल पर, अपनी समझ पर एतमाद नहीं करना है, ठीक है, इसको ईमान कहते हैं, ठीक है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे ना, तब इस कुरान की तफसीर पढ़ने का आपको फायदा होगा, वरना क्या है ये किस्से कहानियां, राइट, उन काफिरों ने ऐसे किया, और उन नबी ने ऐसे किया, और उन मुशरिकों ने ऐसे किया, और मुनाफिकों ने ऐसे किया, क्या है ये किस्से कहानियां है ना आपके लिए, फिर तो किस्से कहानियों से आपको क्या फायदा होगा, सही है। जब तक उस किस्से कहानी को अपने ऊपर अप्लाई करना नहीं आएगा, क्या फायदा है इन किस्से कहानियों के सुनने का, उल्टा जो है वो कयामत के दिन हुज्जत ना बन जाए हमारे खिलाफ कि पढ़ा तो था तुमने तफसीर, तुम्हारे समझ में क्या आई बात, किसके ऊपर अमल किया तुमने, अमल भी किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें, पहले तो एतमाद को समझें, ये क्या चीज होती है, किस पर एतमाद करना है और क्यों एतमाद करना है, ये बात को समझें, इस बात को समझें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसकी फिर डिटेल्स होती हैं कि जी कुफर क्या होता है, इल्हाद क्या होता है, इन चीजों को भी समझें ताकि इनसे हिफाजत कर सकें अपनी, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो बिला तकल्लुफ पूछें। आगे फरमाते हैं, एक मिनट वासे तफसीर में क्या लिखते हैं कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस नूर पर यानी कुरान पर जो कि हमने नाजिल किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल की पूरी खबर रखता है, और उसके बाद इस दिन को याद करो, यानी उस दिन को याद करो, यौमा यजमाउकुम लियौमिल जमअ ذلك يوم التغابن, के जिस दिन यजमाउकुम तुम्हें जमा किया जाएगा, लियौमिल जमअ जमा किए जाने वाले दिन के लिए, जमा किए जाने वाला दिन कौन सा है, कयामत का दिन है। कयामत के दिन के नामों में से एक नाम है यौमुल जमा, जुमा नहीं, यौमुल जमा, ठीक है। तो याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हें कयामत के लिए जमा किया जाएगा, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये खसारे वाला दिन है, हार जीत वाला जिन वाला दिन है, खसारे वाला दिन मुराद है इसकी, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। वमन युमिन बिल्लाहि, और जो अल्लाह पर ईमान लेकर के आया, क्या मतलब, गैब بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر اللہ کی آواز سنے ہوئے، ٹھیک ہے، بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا میسج آئے ہوئے جس کے اوپر اللہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو، رائٹ، اللہ کی کوئی ٹھپا لگا ہو اللہ تعالیٰ کا، ایسے ان تمام چیزوں کے بغیر صرف ایک انسان کی باتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے کر آیا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، یہ سارے الفاظ کون لے کر کے آیا تھا ہمارے پاس، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے، رائٹ، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فون کال نہیں کری تھی نا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آواز نہیں سنائی تھی اپنی، یہ سارے الفاظ کہاں سے آئے، اللہ کا کلام کہاں سے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اعتماد کرنا یہی ہے اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ یعمل صالحاً اور نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کیا ہوتے ہیں بھائی، وہ اعمال جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیک اعمال ہے، وہ اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اس کے جو گناہ ہیں وہ اتار دے گا، ٹھیک ہے، کفر یکفر تکفیرن کا مطلب ہوتا ہے اس کو کینسل آؤٹ کر دینا، ڈینائی کر دینا بھی ہوتا ہے اور ختم کر دینا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سے اس کے سیئات، سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، تو گناہوں کو اس کے اوپر سے یعنی چھٹا دے گا، ہٹا دے گا، اچھا اب اس کے اوپر اگر آپ طالب علمانہ طور پر اس کے اوپر غور کریں تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ بھئی جب ایک شخص ایمان لے کر کے آ گیا اور نیک اعمال کر رہا ہے نا، وہ یا عمل صالحہ، نیک عمل کر رہا ہے، تو پھر تو اس کے گناہ ہونے ہی نہیں چاہیے جن کو کہ اللہ تعالیٰ ہٹائے اس کے اوپر سے، بھئی اگر گناہ ہیں تو پھر اس سے پہلے یہ کیوں کہا کہ نیک عمل کر رہا ہے، بھئی نیک عمل کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے، وہ علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ جو ہے نا پھر بھی ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، جب اتنا اچھا ایک بندہ ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف سے فرما رہے ہیں نا کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹیمپ آپ کو سرٹیفیکیشن مل رہی ہے نا کہ آپ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ کیسے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے، کہ نیک اعمال کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ یا عمل صالحاً، کہ جو ایمان لے کر کے آیا اور نیک اعمال کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں، بھئی یہ کیسے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بتا سکتا ہے، جب تک میں ان کا یہ میسج پڑھتا ہوں، ایمان کی ٹرم صرف اللہ اور رسول کی باتوں کے لیے ہوگی، اعتماد جو ہم علماء اور مشائخ پہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایمان کی بجائے اعتماد کا لفظ یوز کریں گے، ہاں ایمان کا جو ٹیکنیکل لفظ ہے نا، جس کو کہ اصطلاحی استعمال کہیں گے لفظ ایمان کا، تو وہ اصطلاحی یوزیج ایمان کا جو ہے وہ اللہ، یعنی اللہ کی باتیں یعنی قرآن کریم، ٹھیک ہے، اور رسول کی باتیں یعنی حدیث مبارکہ، تو ان کے لیے استعمال کیا جائے گا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور باقی لوگوں کے لیے اعتماد کا لفظ استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاحی استعمال، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل یوزیج، اوکے، لیکن ادروائز یہ جنرل ٹرم ہے، اس کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو یہ جنرل ٹرم ہے، یہ کافر کی بات پر اعتماد کے لیے بھی آپ ایمان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ شاید اس طرح کا استعمال بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظی معنی کے طور پر استعمال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، پیدا کیا گیا انسان غلطی اور بھول سے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من یؤمن باللہ، تو وہ تو بڑا پکا ایمان والا ہے نا، بیکاز قرآن میں جن ایمان والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، یا جس ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام، تو ایمان کی کمزوری اس کی ریزن نہیں بنتی نا، پھر یہاں پر शैतान की चाल की, अच्छा शैतान फिर भी लगा रहता है। तो खैर ऐसे भी बंदे होते हैं कि इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान, कि जिनके ऊपर शैतान का जोर ही नहीं चलता, ठीक है, शैतान करवाता है गुनाह। चल अच्छी बात यह है कि अब माशाल्लाह आप लोग शैतान को भी याद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़ायदा होगा। शैतान के बहकाने में आके, अच्छा ठीक है, ये भी एक अच्छा जवाब है कि भाई ईमान, पक्के ईमान वाला भी जो है ना कभी अहयानन शैतान के बहकावे में आ सकता है। तो शैतान के बहकावे में आ गया तो उससे गुनाह हो जाएगा, हालांकि पक्का ईमान वाला है, हालांकि नेक अमाल करने वाला है, लेकिन ये जो शैतान के बहकावे में आना है ना, ये भी उसके लिए वंस इन अ वाइल ही होगा ना, कभी शैतान के बहकावे में आकर के उसने बुरा अमल कर गया, ठीक है, तो वो तो एक आध गुना इस तरह के कर बैठेगा शैतान के बहकावे में आने की वजह से, ठीक है। शैतान की मिसाल तो बैरूनी दुश्मन के तौर पर है ना, एक्सटर्नल एनिमी, तो एक्सटर्नल एनिमी मुस्तकिल कोशिश तो करती रहती है ना आप पर अटैक करने के, लेकिन आपने बड़े अच्छे डिफेंसेस बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा आपने बॉर्डर सिक्योरिटी अपनी बनाई हुई है, तो आप बैरूनी दुश्मन को रोक के रखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी बैरूनी दुश्मन का कोई एक वार जो है वो कामयाब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अब औरतों के बात शायद ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन वो होता है ना मिसाइल्स जो आते हैं ना, पड़ोसी मुल्क से मिसाइल आते हैं, तो आपने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है कि जब वहां से मिसाइल आता है उस मिसाइल को वो तबाह कर देता है, लेकिन वो इतने मिसाइल मारते हैं कि आपने 100 में से 99 को तबाह कर भी दिया ना, तो एक मिसाइल आप तक पहुंच ही जाएगा, तो वो जो एक मिसाइल पहुंच गया तो उसने आपका नुकसान कर दिया ना। तो ये ऐसी मिसाल है कि शैतान मुस्तकिल आपको गुनाह पे कोशिश करता रहता है, उसकी सारी कोशिशें पक्के ईमान वाले कमजोर बना देते हैं अल्लाह की मदद से, राइट, लेकिन एक आध कोशिश उसकी कामयाब हो जाती है तो गुनाह हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर उसके ऊपर वो तौबा भी कर लेते हैं। बहरहाल ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से गुनाह हो सकता है। और आपने क्या लिखा, सिर्फ अल्लाह के अंबिया मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं होते, हाँ उनसे गुनाह हो सकते नहीं है, ठीक है ना, बाकी गुनाह हो सकते हैं बाकी इंसानों से, यानी औलिया से गुनाह हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 100 हमले शैतान ने किए, 99 नाकाम हो गए, एक कामयाब हो गया, तो औलिया से इस तरीके से गुनाह हो सकता है। सिर्फ अमल करना दूसरों को ना बताना, दूसरों को ना बताना बशरी तकाजे की वजह से सिर्फ इंसान कमजोर है, ठीक है, चलें ये अच्छे जवाब है, और ये वाला जवाब ज्यादा अच्छा था कि शैतान के बहकावे में आकर के यानी कोई एक आध गुना हो जाता है। दूसरी बात ये है कि देखें इसको अगर इस अंदाज में देखें ना कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, कितने अजीम हैं और हम कितने छोटे हैं, ठीक है ना, अगर इस तनाजुर में देखें तो अल्लाह ताला की अजमत और अल्लाह ताला के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है कितनी कामिल डिपेंडेंसी है, हम हर चीज में अल्लाह ताला के मोहताज हैं, राइट, खाना पीना और पहनना ओढ़ना तो दूर की बात, हम एक एक सांस के लिए अल्लाह के मोहताज हैं, राइट, हम सांस नहीं ले सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह ताला भेजते हैं सांस तब हम सांस लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के बगैर। और अल्लाह ताला की अजमत अगर आप थोड़ा सा जरा एस्ट्रोलॉजी वगैरह को देख लें, ये जो यानी दुनिया कितनी बड़ी है, फिर सूरज उनसे कितना बड़ा है, फिर सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, फिर दूसरी गैलेक्सीज कितनी बड़ी हैं, फिर पूरे कॉन्स्टेलेशंस कितनी बड़ी हैं, तो अल्लाह की अजमत जो है ना वो, यानी ये तो छोटी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ये सारी की सारी स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स एंड सब कुछ, राइट, तो अल्लाह ताला खुद कितने बड़े होंगे, अल्लाह ताला ने तो इससे ज्यादा बड़े बड़े आसमान बनाए हैं, जन्नत और जहन्नम क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो अल्लाह ताला की अजमत इतनी बड़ी है और अल्लाह ताला के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि हम किसी एक सांस में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते, अगर यानी हम अल्लाह ताला की किसी दर्जे में कोई नाफरमानी नहीं कर सकते। हक तो ये है कि हमें हर सांस से पहले अल्लाह ताला से पूछना चाहिए कि ए अल्लाह मैं सांस ले लूं या ना लूं, राइट, फिर अल्लाह ताला इजाजत दें तो फिर हम सांस लें, ठीक है ना, यानी अताअत तो अल्लाह की ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, कि हम एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक चीज अल्लाह ताला की इजाजत से करें, उसके बगैर कुछ भी ना करें। वही होता है ना कि जब घर के अंदर कोई बहुत बड़ा होता है तो वो छोटों से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जी कोई इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो आप बड़े से पूछे बगैर ना करें। ठीक है, घर का बड़ा होता है और घर के जो छोटे होते हैं, कितना बड़ा हो गया वो, राइट, ज्यादा से ज्यादा वो कुछ उम्र सालों में कुछ बड़ा होता है, और छोटे जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा चंद साल छोटे होते हैं। ठीक है ना, दोनों ही मखलूक होते हैं, दोनों ही इंसान होते हैं, दोनों की को ही भूख लगती है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जी सारे अहम काम आप पूछ करके करें। तो हमारे लिए खाना पीना क्या अहम काम नहीं है? हमारे लिए चलना फिरना अहम काम नहीं है? हमारे लिए जो दुनिया के सारे मामलात हैं अहम काम नहीं है? बल्कि हमारे लिए तो सांस लेना सबसे ज्यादा अहम काम है ना? सांस लेना कोई अहम काम नहीं है क्या? तो क्या जो सबसे बड़ा है, क्या हमें उससे पूछ के सांस नहीं लेनी चाहिए, राइट, उसकी इजाजत से सांस नहीं लेनी चाहिए? लेकिन हम तो नहीं लेते, ठीक है ना, हम तो हर चीज में अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं देखते, ठीक है ना। चंद शरी हुक्म जो हमें पता होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत नेक लोग जो होते हैं वो उन चंद शरी हुक्म, जो चंद शरी बातें होती हैं उनके अंदर अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करते हैं, लेकिन हर चीज में तो नहीं अल्लाह ताला की मर्जी को देखते हैं। देखते हैं आप अल्लाह ताला की मर्जी, हर हर कदम उठाने पे अल्लाह की मर्जी देखते हैं? नहीं देखते ना, देख ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो हकीकत ये है कि अल्लाह की बड़ाई को देखते हुए ना हमारा तो पूरा वजूद ही गुनाहगार है, हम तो असल में गुनाहगार ही हैं, हमारा तो एक एक लम्हा गुनाह में गुजर रहा होता है, इसलिए कि हम अल्लाह ताला की मर्जी पूछ करके तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, राइट, चंद बड़े बड़े अमाल के अलावा हम तो अल्लाह की मर्जी पूछ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह की अजमत की वजह से ना हम कुछ ना भी करें ना फिर भी हम गुनाहगार हैं, ये अल्लाह की अजमत की वजह से ऐसा है और हमारी छोटाई की वजह से ऐसा है, ठीक है। तो ये जो गुनाह हमारे ऊपर पायल अप होते रहते हैं ना, पायल अप होते रहते हैं ना, ये गुनाह जो है हमारे ईमान लाने की वजह से, रसूल की जो हमने बात पर एतमाद कर लिया है ना, और हम जो बड़े बड़े नेक आमाल करने की कोशिश करते रहते हैं ना, अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से इन छोटी छोटी बातों की वजह की बुनियाद पर हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ करते रहते हैं, माफ करते रहते हैं, माफ करते रहते हैं, ठीक है। ये है इस आयत का मतलब, वमन युमिन बिल्लाही व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही। इनके जो बे इंतहा गुनाह इनके ऊपर मौजूद होते हैं कि ये मेरी मर्जी से तो नहीं पूछ करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, तो उनको मैं इग्नोर करता रहता हूँ, उनको मैं माफ करता रहता हूँ, इनके नामे अमाल से हटाता रहता हूँ, बल्कि नामे अमाल में जाने भी नहीं रहता इनकी गलतियों, ठीक है। और वह युदखिलहु जन्नातिन, और मैं उनको दाखिल कर देता हूँ जन्नात के अंदर, बागों के अंदर, तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, ठीक है, यानी ऐसे बाग हैं कि जिनके साथ साथ जो है वो नीचे से नहरें बहने का मतलब ये नहीं है कि अंडरग्राउंड नहरें बह रही हैं, बल्कि जिनके गोया के जैसे एक हिल है, हिल टॉप है, हिल टॉप के ऊपर एक बाग है, उसके अंदर आप रह रहे हैं, और हिल टॉप के नीचे की साइड पे बड़ी खूबसूरत किस्म की और यानी बड़ी बेहतरीन सुरीली आवाज में पानी बह रहा है, ठीक है, नहरें बह रही हैं, जिसको देख करके आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। तो इस तरह से जन्नत के अंदर बाग भी होंगे और साथ साथ उनके नहरें भी होंगी, और ये खालिदीन फीहा अबदन, हमेशा हमेशा के लिए उस जगह रहेंगे, कभी भी वहां से नहीं निकाले जाएंगे, ठीक है। क्या करना है इसके लिए हमें? इसके लिए हमें एतमाद करना है रसूल की सारी बातों के ऊपर, ठीक है, और हमें नेक आमाल करने हैं जितना कर सकते हैं, जितना हमारी इस्तेआत है उतना नेक आमाल करने हैं, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला की रहमत विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, ठीक है, अल्लाह रहमत विल सफाइस। यही मतलब है कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई जन्नत में नहीं जा सकता सिवाय अल्लाह ताला की रहमत के, ठीक है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी गलतियों कोताहियों को माफ करते रहते हैं ना, तो इस वजह से हम जन्नत में जाएंगे, वरना हम नहीं जा सकते, हमारा तो रुआ रुआ रेशा रेशा गुनाह के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, और हकीकत यही है, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है, यानी एक होता है ना, बंदा बहुत मेहनत करता है, बहुत कुर्बानियां देता है, तो फिर जो है ना उसको अवार्ड मिलता है कि हाँ जी बड़ा उसने यानी बड़ी कामयाबी हासिल करी। ठीक है, और अल्लाह ताला का क्या मामला है, बंदा छोटी छोटी सी काम करता है, थोड़े थोड़े से नेक अमाल कर लेता है और एतमाद कर लेता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इसको कहते हैं ये बड़ी कामयाबी है चीज, ये बड़ा काम किया है मेरे बंदे ने। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, जो ईमान लेकर के आते हैं और अमल सारे करने की कोशिश करते रहते हैं ना, अल्लाह ताला को उन पर बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। ठीक है, उनके कहते हैं ना पंजाबी जुबान, पंजाबी में हूं तो नहीं लेकिन वो सुना है अपने दोस्तों से, निक्के 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 काम करके अल्लाह कहते हैं बड़े बड़े काम किए मेरे बंदे, राइट। हालांकि अल्लाह के सामने क्या हैसियत है हमारे कामों की। ठीक है, तो ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ताला कह रही बड़ी कामयाबी हासिल करी मेरे बंदों ने। वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया, वो कज़्ज़बू बि आयातिना, और झुठला दिया मेरी आयतों को। किसको झुठला दिया मेरी आयतों को, हालांकि आयतें तो अल्लाह ताला की तरफ से आई नहीं है, रसूल आए हैं, रसूल की जुबान से आयतें पहुंची हम तक। ठीक है, उन्होंने रसूल को झुठला दिया, यही मतलब है मेरी आयत को झुठला दिया। ठीक है, तो जिन लोगों ने कुफर किया और मेरी आयत को झुठला दिया, यानी मेरे नबी को मेरे रसूल को लिफ्ट नहीं कराई, ठीक है ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, उलाइका अस्हाबुन्नार खालिदीन फीहा। ठीक है, यही आग वाले लोग हैं जिसके अंदर ये हमेशा रहेंगे। खालिदीना का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। तो देखें फर्क नजर आ रहा है इन दो बातों में, क्या फर्क है, किसी को किसी ने अगर पिक किया हो फर्क, ईमान वालों का तस्करा और काफिरों के तस्करे में क्या फर्क है, कोई बताएगा? क्या कह रही है, जब तक इनका एक प्राइवेट मैसेज था तो उसको पढ़ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया से जो गलती हुई थी, अच्छा उनसे जो गलती हुई थी ना, वो वाली गलती जो थी वो इल्म और इरादे वाली गलती नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो वो इज्तिहादी गलती थी और नबी की मासूमियत के वो खिलाफ गलती नहीं होती है, यूनुस अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई थी। ठीक है, तो वो गुनाह की डेफिनेशन में नहीं आती है। ठीक है, वो एक इज्तिहादी गलती कहलाती है, जिसमें जिसको कहते हैं कि खिलाफे उला काम उनसे हो गया। ठीक है, जो ज्यादा प्रेफर्ड एक तरीका था काम करने का, उसकी बजाय उन्होंने लेस प्रेफर्ड तरीका इस्तेमाल कर लिया काम करने का। ठीक है, तो ये इस वजह से इज्तिहादी गलती कहलाती है, ये गुनाह नहीं कहलाता। ठीक है, गुनाह से अंबिया मासूम होते हैं। तो जी क्या फर्क है इन दोनों में, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी कहा खालिदीन फीहा और काफिरों को भी कहा नार के अंदर खालिदीन फीहा, तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा दोनों के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल, चलने बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। अबदा, अबदा का भी इजाफा है जन्नत के तस्करे के साथ। ठीक है, और जहां जहन्नुम का तस्करा है वहां पर अबदन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब क्या मतलब कि क्या ये लोग जहन्नुम में हमेशा नहीं रहेंगे, क्या जन्नत में तो हमेशा रहेंगे अबदन अबदन रहेंगे लेकिन जहन्नुम में क्या हमेशा नहीं रहेंगे? नहीं, जहन्नुम में भी हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की कौन सी वाली सिफत गालिब है, इन्ना रहमती वसेअत कुल्ल शय। ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो हर चीज के ऊपर वसी है, हर चीज के ऊपर गालिब है। क्या मतलब, काफिरों को जहन्नुम में नहीं डालेंगे? नहीं, जहन्नुम में तो डालेंगे लेकिन जहन्नुम का तस्करा जो है ना वो कम अल्फाज में किया। ठीक है, जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने के लिए एम्फेसिस जो किया, जन्नत के मुकाबले में कम अल्फाज से एम्फेसिस कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी दोनों की सेम ही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, ये भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, लेकिन अबदन का लफ्ज निकाल लिया यहां से। और सिर्फ यहाँ नहीं, कुरान शरीफ के अंदर और भी मुकामात के ऊपर, रदी अल्लाह वो सूरह नबा के अंदर भी, ठीक है, वहां पर भी अबदा का लफ्ज जन्नत के लिए है और जहन्नुम के लिए अबदा का लफ्ज नहीं है, जहन्नुमियों के लिए अबदा का लफ्ज नहीं है। ठीक है, तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह था ना जहन्नुम जो था ना कि जो जो गंदी चीज होती है, जो जो नापसंदीदा चीज होती है, जो कि अल्लाह ताला नहीं करना चाहते अपने बंदों के साथ, उसको कम अल्फाज में निपटा दिया, राइट। व्हाई यूज अनदर अनदर लव्स, वाई यूज एन एक्स्ट्रा लफ्ज़। जब बात मुकम्मल हो गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, तो एक लफ्ज़ कम करके बात ख़त्म कर दी। जबकि जहां पर होता है ना, दिल चाह रहा है, दिल यानी बहुत बाग बाग हो रहा है उसका तस्करा करके, वहां पे इंसान ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला की भी यही सिफत है कि ज्यादा लफ्ज के अंदर जन्नत का तस्करा करता है। ठीक है, वो बिसल मसीर, और ये बहुत बुरी जगह जाएंगे। तो यानी जैसे एक होता है ना हसरत किसी के ऊपर, क्यों क्यों इसने ऐसा किया, इतने बुरे ठिकाने को इसने क्यों पसंद कर लिया अपने लिए, बिसल मसीर। खुलासे तफसीर में इसके लिए अल्फाज थे चंद, बस ये खुलासे तफसीर पढ़ के आज की क्लास रोक देते हैं, बीच में जरा लंबा ब्रेक भी आ गया था। बाकी इंशाल्लाह मारफ मसाइल अगली क्लास में शुरू कर लेंगे। तो खुलासे तफसीर में फरमाते हैं कि जिस दिन की तुम सबको उस जमा होने के दिन में जमा करेगा, यही दिन है सूदो जिया के जाहिर होने का। सूदो जिया कहते हैं नुकसान, यानी मुसलमानों का नफा, यानी नफा और नुकसान। तो यानी मुसलमानों का नफा और काफिरों का नुकसान उस रोज अमलन जाहिर हो जाएगा, क्योंकि यौम तगाबुन जो है वो खसारे वाला दिन कहलाता है। और बयान इसका ये है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा, अल्लाह उसके गुनाह दूर कर देगा और उसको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा, ये लोग दोजखी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे और वो बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से महफूज फरमाए और अपनी जन्नत अल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सलाम।